यमुना तीरावन छारी यमुना तीरावन छारी यमुना जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन छारी यमुना यमुना तीरावन छारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare.
Jai Om Vishnupad Paramhans Prabhuji Kacharya Shrota Shrata Divine Grace Sabhai Charanarvin Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Puri Dham Ki Jai Dwarka Puri Dham Ki Jai Navdeep Mayapur Dham Ki Jai Purushottam Shet Jagannath Puri Dham Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Upasthit Bhakta Vrind Ki Jai Nitai Gaur Bhimanande All glories to the symbol of this Hare Krishna, glories to the symbol of this Glories to Guru Granth, glories to Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 12 हमारे पीछे बोलिए विधर्मा धर्मा च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंच इमा धर्मज्ञ अधर्मवतः त्यजेता विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छला अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञो धर्मवत्तजे विधर्म पर धर्मश्च आभास उपमा छला अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञो धर्म वतज्जेत विधर्म पर धर्मश्च आभास उपमा छला अधर्म शाखा पंचे मा धर्मज्ञो धर्मवतजे माता जी इस
धर्म शाखा पंचे मा
चे धन्यवाद। विधर्म विधर्म पर धर्म अन्य द्वारा अभ्यास किए जाने वाला धर्म च तथा आभास दिखावटी धर्म उपमा सिद्धांत जो धार्मिक लगते हैं किंतु होते नहीं छल ठगने वाला धर्म अधर्म शाखा जो अधर्म के विभिन्न शाखाएं हैं पंच पांच इमा ये धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला अधर्मवत उन्हें अधार्मिक रूप में स्वीकार करते हुए त्वजेत त्याग दें। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अधर्म की पांच शाखाएं हैं जो विधर्म परधर्म आभास उपधर्म तथा छल के नाम से उचित रूप से जाने जाते हैं। जो असली धार्मिक जीवन से अवगत हों उसे इन पांचों को अधर्म मानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य कोई भी धर्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के विपरीत हो उसे विधर्म या छल धर्म माना जाना चाहिए और जो वास्तव में धर्म में रुचि रखता हो उसे इसका परित्याग करना चाहिए। मनुष्य को एकमात्र कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए निसंदेह उत्तम बुद्धि की आवश्यकता होती है जो अनेक जन्मों के बाद भक्तों की सत्संगति से करने से तथा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के बाद जागृत होती है। श्री कृष्ण द्वारा संस्कृत धर्म सर्वधर्मानि परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज के अतिरिक्त प्रत्येक धर्म को अधर्म समझकर त्याग देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और स्कंद सात अध्याय पंद्रह, इसका नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। और इसमें अभी भी वही प्रसंग चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दी जा रही है और आज ये बताया जा रहा है कि पांच प्रकार के अधर्म कौन से हैं। और अगले श्लोकों में इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया गया है, बता रहे हैं पांच प्रकार के अधर्म हैं, जो विधर्म कहलाता है, परधर्म, आभास, उपधर्म और छल। ये पांच प्रकार के अधर्म हैं। और परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं सभी प्रकार के जो धर्म भी कहलाए जाते हैं उनको भी त्याग करने की बात कह रहे हैं। एक तो यहां पर बताया अधर्म पांच प्रकार के, और प्रभुपाद जी क्योंकि कृष्ण के अंतरंग पार्षदों में से शुद्ध भक्तों में से एक हैं, तो शुद्ध भक्त जो हैं जो भी बात करता है वो भक्ति ही की बात करेगा। कहते हैं योगी को मिले, योगी मिले योगी से, करे योग की बात, और भक्त मिले भक्त से, करे भक्ति की बात, और चोर मिले चोर से, करे चोरी की बात, और इस तरह से बोलते हैं। या फिर यूं बोलते हैं कि जो जो भक्त नहीं होते हैं, अभक्त मिले अभक्त से, करे घूसा मुकालात। तो जिसकी जैसी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो उस तरह की बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने सारे ग्रंथों में हर जगह जो हमारे लिए विशेष धर्म है, जिस धर्म का पालन कर हम लोग भगवान के करीब जा सकते हैं, हर जगह उसकी ही संस्तुति करते हैं। और जो अधर्म है, जहाँ आज पांच प्रकार का अधर्म बताया है, या इसके अलावा जो धर्म भी है, क्योंकि धर्म की व्याख्या है शास्त्रों का पालन करना भी धर्म है, तो धर्म की भी कई स्टेजेज हैं, और उसमें कर्मकांड हो, ज्ञान कांड हो, फिर ऊपर जाके उपासना कांड, तो इस प्रकार के जितने भी विधि और विधान रिचुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं धर्म की जो है पूर्ति करते हैं, उसके भाग हैं, उसके अंग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा टॉप मोस्ट धर्म रखने की बात करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के प्रपट में हर जगह कृष्ण भक्ति की ही बात की जाती है, कृष्ण को समर्पित होने की ही बात की जाती है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट रिलीजन है, जिसका भगवान श्री कृष्ण भी अनुमोदन करते हैं अपने भगवद गीता के संदेश में कि सर्वधर्मानि परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज, कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो। अधर्म का तो त्याग करना ही है, लेकिन कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों का भी त्याग करो। तो ये कौन से धर्म हैं? ये वो धर्म हैं जो उस टॉप मोस्ट धर्म के इर्द गिर्द कहीं नहीं बैठते। मानसिक धर्म है ना, या जो और प्रकार के रिचुअल्स हैं, पारिवारिक, सोशल, नाना प्रकार के धार्मिक प्रवृत्तियों से बंधे होते हैं, या उनके अनुष्ठानों से बंधे होते हैं, नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नैतिक धर्म हो गया है ना, वैल्यूज, सोशल, सामाजिक है ना, पारिवारिक धर्म, तो इस प्रकार के कई धर्म हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर केवल मात्र मेरी एक शरण में आओ। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना ये टॉप मोस्ट धर्म हो गया, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि बुद्धि, जो सुसंस्कृत हैं, बुद्धिमान हैं, वही इस बात को समझ भी सकते हैं और इसका प्रयास भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो धर्म में लगे हुए लोग हैं वो बुद्धिमान हैं, है ना। यजंति ही सुमेधसा, कलयुग का जो टॉप मोस्ट धर्म है वो है संकीर्तन यज्ञ, भगवान की कीर्ति का गान करना, ये टॉप मोस्ट रिलीजन है। और ये टॉप मोस्ट रिलीजन को कौन फॉलो करेगा, जो सुमेधसा, जिसकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होगी, बहुत ही समझदार व्यक्ति होगा, उसकी भविष्यवाणी की है 5000 साल पहले कि वो लोग चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, भक्ति हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन प्रकार के गुणों से व्याप्त है पूरा संसार, और जितनी भी जनसंख्या हम देखते हैं उन सब जनसंख्या जितने भी लोग हैं सबके अंदर इन तीनों गुणों का ही प्रभाव रहता है। और भगवत गीता में कहा जाता है कि ये तीनों गुण जो हैं, जो सतोगुण के हैं, सात्विक वृत्ति हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ये ऊपर के लोकों में जाते हैं, और जिनके अंदर रजोगुण अधिक है वो मध्यम तिष्ठन्ति, वो वापस इस लोक में आ जाते हैं, और जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं अधोगच्छन्ति, वो अधोगति को प्राप्त करते हैं। अधोगति का मतलब नरकों में तो जाते ही पनिशमेंट के लिए, लेकिन साथ ही साथ अधोगति का मतलब मनुष्य से नीचे की योनियां प्राप्त करते हैं, पशु योनियां हो गई, वृक्ष की योनि हो गई, इस प्रकार की अधोगति को प्राप्त करते हैं। और ये जो तीन प्रकार के गुण या फोर्सेस हैं, ये सभी जीवों में उपस्थित रहता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। गीता में कहा है कि कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को पछाड़ कर आगे आ जाता है, जीत जाता है। तो क्या होता है वो, जिस किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है तो ज्ञान में आ जाता है, सही क्या है गलत क्या है मुझे सही करना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे धर्म का पालन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे भगवान के नामों को जप करना चाहिए, वैष्णवों की संगति करनी चाहिए, ग्रंथ अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। तो वो अपने भविष्य का, अपने लाभ की चिंता करता है, सत्य लाभ का। लेकिन कई बार बताते हैं कि इस सतोगुण को पछाड़ कर रजोगुण हावी हो जाता है। तो रजोगुण की स्थिति में क्या करता है व्यक्ति, उसके अंदर असीम आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और वो पूरे दुनिया के विषय में सोचने का प्रयास करता है, अपने प्रोजेक्ट्स के विषय में सोचने का प्रयास करता है, विशेष प्रकार की योजनाएं बनाने का प्रयास करता है, और प्रयास करने के साथ साथ वो उन सबको शेप देता है, उन कामों को करने का भी प्रयास करता है। तो ये रजोगुण की वृद्धि के कारण होता है, अर्थात वो धर्म से हटकर इस संसार में लिप्त रहने का प्रयास करता है, तो ये रजोगुण की वृद्धि से होता है। फिर कह रहे हैं कि कई बार रजोगुण को और सतोगुण को पछाड़ कर तमोगुण हावी हो जाता है। तो तामसिक वृत्ति में क्या होता है कि व्यक्ति कहता है छोड़ो, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, आ ही जाएगा अपने आप जो किस्मत में लिखा है। सोते हैं, है ना, कितना सुंदर मौसम है, ये मौसम मेरे लिए बनाया गया है, इसमें तो क्या करना चाहिए, एसी चलाना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस पे, रजाई निकालनी चाहिए और घंटों सोना चाहिए, शाम को उठेंगे। तो तामसिक वृत्ति व्यक्ति को लेजी बनाता है, उसको पागल बनाता है। तो अधिक से अधिक सोना चाहता है और बासी सूखा बदबूदार भोजन करना चाहता है। बदबूदार भोजन कौन सा होता है, जो बासी है, या फिर जिसमें प्याज की बदबू मिलाई गई है या लहसुन की बदबू मिलाई गई है कि नहीं, तो उसका मन करता है इस प्रकार का भोजन करूं। ये राजसिक लोग भी करते हैं, इससे उनके अंदर और रजोगुण की वृद्धि होती है। तो भोजन अपने आप, भोजन और संगति, ये मेन दो कारण हैं किसी के अंदर किसी भी प्रकार के गुण की अधिकता लाने में या कम करने में। रजोगुण का भोजन भगवत गीता में लिखा है अधिक उष्ण तीक्ष्ण मसालेदार खट्टे गरम गरम मिर्च वाले अचार टाइप, इस तरह का जो भोजन है ये हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि करता है। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की वृद्धि होती है इस तरह के भोजन को कर कर, तो फिर वो असीम आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, और इसलिए ऐसे लोगों की संगति करता है जो उसी मेंटालिटी के हैं, ठीक है कि नहीं। और जो तामसिक वृत्ति का भोजन करते हैं या तामसिक स्तर पर रहते हैं, तो वो फिर सोना ही पसंद करते हैं, है ना, वो इतने आलसी होते हैं। जैसे एक बार एक आलसी तामसिक वृत्ति था, पेड़ के नीचे बैठा था, तो गांव में सब जानते थे बड़ा आलसी है, ये कुछ काम नहीं करता। तो एक गांव का व्यक्ति सामने से जा रहा था, उसने आवाज मारी, भाई साहब एक मिनट इधर आना। कहते हैं तेरे पास नहीं आना, तू तो तामसिक है, तेरा तो संग करके भी फायदा नहीं है। कहते नहीं नहीं एक मिनट इधर आओ। कहता बहुत भूखा हूं। कहता भे बेर के पेड़ के नीचे बैठा है और कह रहा है भूखा हूं, उठ और खा ले बेर। कहते हैं ऐसा है, आप ही उठा के मुंह में डाल दो ना। कहता हे भगवान, ये भी आलसीपन की पराकाष्ठा है। तो बेर उठाता उसके मुंह में डाल देता है, कहता ले मर, और चला जाता है। तो वो खा लेता बेर। शाम को फिर वही आदमी सामने से जा रहा था, कहता भाई साहब एक मिनट इधर आना, कहता आप क्या है, कहता गुटली तो निकाल दो मुंह से मतलब इतना आलस्य है। तो जो आलसी हैं, दुखी हैं, कुछ करना ना चाहते, परेशान, तो तमोगुण में हावी उसमें रहते हैं। भागवतम में लिखा है कि इस संसार में दो लोग सुखी हैं, एक जो बहुत बुद्धिमान है, सात्विक वृत्ति के हैं, हमेशा ज्ञान में रहते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, उन्हें मालूम है शरीर आत्मा का भेद, उन्हें मालूम है ये संसार जो है दुखाले है, उन्हें मालूम है कि यहां पर कोई भी सुख हम लेने का प्रयास करेंगे टेम्परेरी है, तो क्यों ना भगवान के नाम में सुख लें। तो वो सात्विक वृत्ति के लोग बहुत सुखी है। और दूसरे कौन से लोग सुखी हैं, जो घोर तमोगुण में है, जिन्हें मालूम ही नहीं मेरे कपड़े पहने नहीं पहने, नाक बह रहा है, शराब पी के लेटे हुए हैं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, तामसिक हैं और सो रहे 12 घंटे 18 घंटे, तो उसमें भी सुख है कि नहीं। तो भागवतम कहते हैं वो भी सुखी हैं और वो सात्विक वृत्ति के सुखी हैं। कहते हैं इनके अलावा जो इनके बीच में है वो सारे दुखी हैं। इनके बीच में कौन आ गए हैं? हम सब लोग आ गए ना। तो हम उस सत्वगुण में आनंद ले रहे हैं, नाम में आनंद नहीं ले रहे, सुख नहीं मिल रहा, और ना हम लोग पी के लेटे पड़े हैं सड़क पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। वो एक भक्त ने एक लेक्चर में बोला भी था ना कि एक शराबी पहुंच जाता है पंडित जी के पास, सुना होगा आपने, व्हाट्सएप पे खूब चल रहा था। तो कहता कौन बड़ा, कहता पृथ्वी बड़ी, तो कहता पृथ्वी बड़ी तो फिर ये शिव जी उस पे शेषनाग पे क्यों खड़ी, और शेषनाग शिव जी के गले पे क्यों पड़ा, और ऐसा बड़ा कुछ पूछता है। तो कहता भाई तू बता शराबी कौन बड़ा, कहता सबसे वो बड़ा जो बोतल पीकर भी अपने पैरों पे खड़ा है ना। तो सुखी कौन है, जिसको कुछ दुनिया की सुध नहीं है, और जीवन मुक्त लोग जिन्हें वास्तव में ज्ञान के आधार पर मालूम है क्या कि सुख क्या है, तो इसलिए वो संसार में न रमते, वो इस संसार में रमण नहीं करते। तो बीच के लोग हैं हम, है कि नहीं, ना तो उस स्तर पर आनंद ले रहे हैं और ना उस घृणित आनंद को ले रहे हैं। वास्तव में वो सुख जो है वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी बोला गया है कि ठीक है थोड़ी देर के तो उसको लग रहा है। और बीच के लोग सारे क्या हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ से फंसे पड़े, अच्छी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। तो धर्म की बात हो रही थी, तो भगवान ने बताया कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, हर एक प्रकार का धर्म का त्याग करो, क्योंकि जो तामसिक राजसिक और सात्विक लोग हैं, ज्ञान केवल सात्विक वृत्ति के लोगों को रहता है और यही लोग धर्म को समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सब अधर्म है। हो सकता है कि इससे इस टॉप मोस्ट धर्म जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इससे नीचे के भी कुछ धर्म हो, रिचुअल्स हो, देवी देवताओं की पूजा इत्यादि की बात करते हैं, ये चढ़ाने से ये मिल जाएगा, वो करने से ये मिल जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो ये वैदिक धर्मों से निकाले गए वो अनुष्ठान है जिससे कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता है लोगों को, लेकिन ये लाभ भी टेम्परेरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उस प्रकार के धर्मों का भी अपने परपेक्ट्स में बताया कि ठीक नहीं है, हमें टॉप मोस्ट धर्म ही पालन करना है। तो एक बार एक क्लासरूम में एक टीचर पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि जिस प्रकार अच्छी चीज होती है, धर्म होता है तो अधर्म भी होता है ना। तो अगर भगवान ने अच्छाई बनाई है तो बुराई किसने बनाई है, फिर बुराई भी भगवान ने बनाई है। तो एक छोटा बच्चा था, उसने बोला सर मैं एग्री नहीं करता इस बात से। कहते अच्छा बताओ। तो उन्होंने बोला कि जैसे हीट है, हीट क्या बोलते हैं, हीट को ऊष्मा, हीट गर्म, तो कहते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं गर्मी की, हीट की, हम कभी पढ़ाई नहीं करते कोल्ड की। इन द एब्सेंस ऑफ हीट कोल्ड एग्जिस्ट है ना, जब हीट नहीं है तभी तो कोल्डनेस है, ठंडा तब है ना जब हीट नहीं है। तो उन्होंने ये एग्जांपल देके बताया। तो कहते उसी तरह धर्म की अनुपस्थिति में, धर्म की अनुपस्थिति क्या है? अधर्म है। तो बड़े सुंदर ढंग से एग्जाम्पल से समझाया उन्होंने। फिर एक एग्जाम्पल और दिया कि प्रकाश उजाला और अंधकार, तो कहते हैं अंधकार जो है वो प्रकाश की एब्सेंस है, समझ रहे हैं? अंधकार एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि प्रकाश वहां पर नहीं है, इसलिए अंधकार है, यूं बोलना चाहिए। उसी तरह ये समझाने के लिए थे बात, लेकिन वास्तव में देखा जाए जो धार्मिक नहीं है वो अधार्मिक है, जो सुखी नहीं है वो दुखी है। हमारे शास्त्र में बताते हैं चैतन्य चरितार्थ में, जहां कृष्ण वहां नहीं मारे अधिकार, जहां प्रकाश वहां पर अंधकार नहीं होना चाहिए। तो ये बात सेम लगती है, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो सबसे पहले उन्होंने इसी प्रकार की सृष्टि करने के बाद अधर्म भी उन्होंने किया। अगर धर्म का प्रकाटन करा तो अधर्म उनके पीछे से अर्थात बैक साइड से अधर्म निकला, और अधर्म जो है उससे दंभ और माया छल निकला, और उन्होंने आपस में संग किया बहन भाई ने, तो यहीं से अधर्म शुरू हुआ। और उनके बाद उनके और पुत्र हुए, पुत्री हुए, कहीं क्रोध हो रहा है तो कहीं पर निकृति हो रही है, इस प्रकार सब संग करते रहे, तो वो धर्म की अधर्म की भी परंपरा है। आखिरी में कलयुग भी है, पाप भी है, मृत्यु भी है, ये सब अधर्म है। चौथे स्कंद में है इसके विषय में, तो ये इन सब के उत्पन्न, ये सब भी उत्पन्न हुए। तो कहने का क्या मतलब है, जहां पर धर्म नहीं है वहां पर अधर्म है, और अधर्म क्या है और धर्म क्या है ये भक्तों को समझना चाहिए। शास्त्रों में कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकला है या जो भगवान ने ग्रंथ दिए हैं वो धर्म है, उसका पालन करना धर्म है और उसका पालन ना करना अधर्म है। आज जो पांच प्रकार की शाखाएं बताई हैं अधर्म की, उसके बारे में बता रहे हैं अगले श्लोकों में, उसको मैं खाली पढ़ देता हूं कि जो ये धर्म है, जैसे जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं, जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं वो विधर्म कहलाता है। स्वधर्म क्या है? वास्तव में जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन अगर कोई रिचुअल या धर्म का कोई अंग हमें ये करने से रोकता है, वो ये बोलता है नहीं देश की भक्ति सबसे ऊंची है, बाद में करना सेल्फ रियलाइजेशन, तो ये क्या है? विधर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस शरीर को अपना मानता है, क्या श्लोक है वो, कहां से शुरू होता है? यस्य बुद्धि कुणपेत्र धातु के, ऐसा व्यक्ति जो इस तीन प्रकार के धातु से बने हुए शरीर को अपना मानता है। फिर कहने कलत्रादिशु भौम इज्जति, और अपनी भूमि को पूजनीय मानता है। तो आगे बताया गया है सा एव गोखरा, ऐसा व्यक्ति गधे और गाय के समान है। अब आप बोलोगे तो संसार में तो हर जगह देशभक्ति की बात हो रही है, देश धर्म राज धर्म, लेकिन ये टॉप मोस्ट धर्म नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर को शरीर मान रहा है तो यहां से अज्ञानता शुरू हो गई, क्योंकि ये शरीर तो टेम्परेरी है, पांच तत्वों का बना है, इसके अंदर आत्मा है वो परमानेंट है, और इस शरीर के बने हुए तीन धातुओं से बने हुए शरीर को अपना शरीर मानता है, और इन्हीं तरह के तत्वों से बने हुए दूसरे शरीर को अपना रिलेटिव मानता है, और उनके लिए पूरा जीवन कर्म करता है और भोग विलास की चीजें इकट्ठी करके लाता, उनको भी देता और खुद भी करता है। जैसे मृगारी, पशुओं की हत्या करता था, तड़पाता था, और क्या करता था? अपने परिवार का पालन करता था। जब नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि जाओ घर से पूछ कर आओ कि जो तुम पाप कर रहे हो तुम्हारे घर के भागी भी हम बनेंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हम क्यों बनेंगे, तुम्हारा फर्ज है ये करने का। तो उन्होंने कहा जी मना कर दिया उन्होंने, तो कहते हाँ तुम अधर्म कर रहे हो पेट पालन के लिए। तो कहते मैं तो भूखा मर जाऊंगा अगर मैं पशुओं को नहीं काटूंगा और बेचूंगा नहीं। तो
उन्होंने कहा इसको अधर्म से ना कर इसको धर्म के साथ करो। कहते पकड़ो ये माला, टॉप मोस्ट धर्म अपनाओ, क्योंकि भगवान ने कहा है सर्व धर्मानि परित्यज्यम, सभी चीजों का त्याग करो, परिवार पालन करना भी तो तुम्हारा धर्म है ना। तो इस धर्म का उन्होंने त्याग करवा दिया कि जाओ गंगा के किनारे बैठो और कृष्ण को समर्पित हो जाो और जाओ और चैंट करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो टॉप मोस्ट धर्म बताया उनको। और भगवान क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्य भिक्तानां योगक्षेम विहामि हम, कि अगर कोई व्यक्ति मेरा अनन्य भक्ति करता है, अनन्य चिंतन चिंतन करता है, किसका, मेरा, कृष्ण कहते हैं। अनन्य मतलब फिर और कुछ अन्य नहीं, 100% फिक्स्ड। और नारद जी ने मृगारी को भी बोला तुम ऐसा करो, मृगारी ने ना लेफ्ट किया ना राइट किया, ना कोई अपनी चीज मिलाई ना कहीं से कुछ और सुना, सुनने के बाद चार पांच से सलाह मशवरा भी नहीं किया क्या करना चाहिए बताओ। मैं तो अधर्म करता था, अचानक नारद जी ने बोल दिया गंगा किनारे बैठ के चैंटिंग करो, बताओ मेरा घर है, परिवार है, बाप है, बेटा है, बहू है, सब है, कैसे काम चलेगा, इतना भी थोड़ी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। आप मुझे बोलो बेटा एक माला कर ले और चार दस को मत काट, चार को काट, भी घर भी चलता रहता और ये भी चल लेता है कि नहीं। हमारे को जब शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन मिलती है या गुरु की इंस्ट्रक्शन मिलती है तो हम क्या करते हैं, मृगरारी की तरह करते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें से मेरे लिए क्या है, मैं कितना फॉलो कर सकता हूं, इतना तो कर सकता हूं, उतना करता हूं, नहीं नहीं ज्यादा मत करो, मंदिर मत जाओ, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, रोज नहीं बैठना चाहिए, क्यों, क्योंकि ज्यादा समझ आ जाएगा, ज्यादा समझ आ जाएगा तो वो सब काम छोड़ दोगे जिन्हें हमें करना चाहिए, जिसके लिए हम तैयार हैं। तो इस प्रकार मृगारिणी ने कहीं पर सलाह मशवरा नहीं किया और उसे नारद जी की बात पर पूरा विश्वास था और वो गंगा किनारे बैठ गया जाके और वहां पर भगवान के नाम का जप करने लगा। अब भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते, जो मेरा अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, तो मैं क्या करता हूं, योगक्षेम विहामि हम, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं और जो उसके पास नहीं है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसे मैं पूरा करता हूं। या तो इस बात पे विश्वास करो। तो मृगराज ने किया, नारद जी को विश्वास था कि अगर ये जप करेगा तो उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। और हुआ क्या, लोगों को पता चल गया, अरे भाई मृगरारी जो सबको काटता था, मारता था, पीटता था, आजकल वो भक्त बन गया है, गंगा किनारे जप कर रहा है। कहते क्या बात कर रहे हो, चलो देख कर आए। सब जाके देखने लगे, जय हो मृगरारी जप कर रहा है, जय हो वांछा कल्पतरु विश्वास सिंधु वेशवत नाम पावने भी। कुछ ना कुछ पैसे चढ़ा दिए, किसने अन्न दे दिया, किसने फल फूल रख दिए। मृगरारी आंखें खोली, कहता कमाल हो गया इतना सारा, जय हो भगवान, बड़ा आनंद है, और जब किया और पैसा आया, घर परिवार को भी पाला, खाया खिलाया, फूड फॉर लाइफ किया, आओ आपको भी खिलाएंगे, सबको बांटना शुरू कर दिया। तो क्या किया था उसने, गुरु के शब्दों पर विश्वास और भगवान की शरण पूरी तरह से ली। तो जब हम पूर्णतः शरणागत होते हैं तो ये उस स्थिति में होता है हमारे साथ ऐसे। तो उस स्थिति के लिए वैसा भक्त भी चाहिए नारद मुनि जी जैसा, और फिर पापी कैसा भी हो, भाई लोहा कैसा भी हो, अगर पारस पत्थर है तो उसको सोना बनाएगा ही बनाएगा। प्रभुपाद जी ने भी तो सोना बनाया, पारस पत्थर बनाए, जिस धर्म के विषय में हम बात कर रहे हैं उस धर्म को हृदय में लेके चलते थे। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, हमेशा भगवान का स्मरण कीर्तन वृंदावन लेके साथ चल रहे हैं। वहां पर मिले कौन उनको, किस प्रकार के अधिकारी, यहां बोल रहे सुसंस्कृत बुद्धिमान ज्ञानवान पुण्यकारी लोग, ऐसे लोग इन टॉपिक्स को समझ पाते हैं। और वहां पर कौन थे, जिन्होंने कभी कृष्ण सुना ही नहीं, जिन्होंने कभी राम नहीं सुना, ऊपर से स्तर क्या था उनका, घोर तमोगुण, सतोगुण में भी नहीं थे, कि सुबह 4 बजे उठते हैं वो मंगला आरती, ऐसे नहीं थे, वो हिप्पी थे, चरस गांजा एलएसडी लेते थे, सड़कों पे लेटे थे, महीने पानी में तो छूना मतलब टच कर लिया समझ लो हो गया काम, और टच भी करते थे किसको, जूस को, हाँ उसको सोचते थे हो गए पवित्र। तो इस प्रकार तो स्नान होता था उनका। और प्रभुपाद जी किस स्तर पर थे, महाभागवत स्टेज पर, और वो किस प्रकार के मृगारी थे, जो मांसाहार भी करते थे, मांस भक्षण करते थे, जो मृगारी बेचता था, है ना, और हर प्रकार का मदिरा पीते थे, चरस पीते थे, एक बार इंजेक्शन लगा लिए तो 24 घंटे तक कोई शुद्ध नहीं है। मृगराज तो फिर भी पीता नहीं था उस समय, पिया हुआ नहीं था। ये लोग तो पी रखे थे, इंजेक्शन लगा रखे थे, नहाए भी पता नहीं कब थे लास्ट टाइम, बाल भी बड़े हुए थे, मलमूत्र त्यागा हुआ था, घर से निकाले हुए थे, सरकार के द्वारा कंडेम्ड थे, एकदम मृगराज से भी खतरनाक स्थिति थी उनकी तो। लेकिन प्रभुपाद जी जब वहां पहुंचे और उनके मध्य में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो जितने भी मृगरारी से टेंथ ग्रेड के जो मृगरारी थे उनको भी क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, वो लोग भक्त बन गए। उन्होंने भी सब कुछ छोड़ा, बोतल छोड़ी, इंजेक्शन छोड़े, रोज स्नान करने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे और मृगरारी से भी ज्यादा शुद्ध बन गए, केवल हरिनाम से। देखिए तो नारद जी का हम गुणगान करते हैं तो प्रभुपाद जी का कितना करना चाहिए। नारद जी ने एक को पकड़ के प्रचार किया और भक्त बनाया, और प्रभुपाद जी ने तो टॉमस्किन पार्क में बैठ के सैकड़ों लोगों को भक्त बनाया, और वो भक्तों ने आज पूरे संसार में प्रचार की अग्नि से, पूरे विश्व का जो है पाप धो डाले। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसकी, उसके अंदर ये शक्ति होती है लोगों के हृदय को बदलने की। पारस बना दिया उनको, सोना नहीं बनाया, वो भी प्रचार करने लगे प्रभुपाद जी की तरह। वो लोग भी इतने पवित्र हो गए कि जिसको भी देखते थे उसको भक्त बना देते थे, जिसको भी प्रचार करते थे उनको भी भक्त बना देते। तो यहां पर बता रहे कई बार स्वधर्म जो हमारा है कि हमें भक्ति करनी है, उसके मार्ग पर रोड़े आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, या हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो वो विधर्म है। जैसे हम बोलते हैं जब नियमों का पालन करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। सभी डूज एंड डोंट्स, इतने सारे यम और नियम हैं, उनका पालन करना कुछ है निषेध, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ओके, और क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, माला करनी चाहिए, श्रावण का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, ये सब पॉजिटिव है, ये करना चाहिए। निषेध क्या है, मांसर नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। तो अधर्म जो बताते हैं, जो ये यम और नियम है, इनका पालन करने का क्या औचित्य है, इनको पालन करने का और निषेध को अपनाने का उद्देश्य है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सके और कृष्ण को कभी भी भूले ना। उसी प्रकार इन सारे रिचुअल्स और धर्म का एक ही मतलब है कि हमेशा धर्म अर्थात कृष्ण की भक्ति करें और इसके फेवरेबल जितनी भी चीजें उसका पालन करें और अनफेवरेबल जितनी चीजें उसका त्याग करें। हो सकता है हम उस स्तर पर ना हों या उस प्रकार के महाभागवतों का संग ना प्राप्त हो रहा हो, लेकिन ग्रंथ है, उन महाभागवतों की वाणी हमारे पास है, हमें उसका संग करना चाहिए। और नित्यम भागवत सेवया, जब नित्य भागवत का सेवा करेंगे, श्रवण करेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितना भी अभद्र है जो हमें भक्ति करने से रोकता है, पुण्य कर्म करने से रोकता है, भक्ति करने से, भक्तों का संग करने से रोकता है, भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है, नहीं नहीं आगे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इतना भी माला थोड़ी करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, सब छोड़ दिया, छुपाते हैं हम, डरते हैं, माला भी छुपाते हम, तिलक भी नहीं लगाते, फायदे बहुत हैं तिलक के। हमें याद है जब कभी हम ऑफिस जाया करते थे तो तिलक लगा के जाते थे, है ना, मेरे तो हेलमेट पर भी तिलक था। तो एक बार मैंने देखा कि आगे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा और मैं हेलमेट के साथ नहीं था, हेलमेट टांग रखा था लेकिन मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, देख लिया मैंने पुलिस वाला सामने खड़ा है, मैंने बाइक को रोक लिया और जल्दी से हेलमेट पहना और फिर चलाई, उसने फिर भी हाथ देख के रोक दिया, रुक जाओ, मैं कह रही
देख लिया उसने, कहते जरा साइड में आ जाओ, रोका। फिर पहले कहते भाई साहब एक बात बताओ, मैं कहते आपके माथे पे भी तिलक है, आपके हेलमेट पे भी तिलक है, इसका मतलब बताओ जरा। मैंने कहा एक काम करो थोड़ा और साइड में आ जाओ। फिर उनको फिर थोड़ा और साइड में ले गया और फिर उनको तिलक का मतलब बताया, फिर उनको बताया कि हम कहाँ जाते हैं, किन से जुड़े हैं। तो मतलब तिलक का इतना फायदा कि लोगों को कृष्ण का स्मरण होता है, लोग पूछना चाहते हैं। एक बार मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एयरपोर्ट जाना था, तो नारायणा से निकला और धौलाकुआं की रोड पर आ गया, तिलक लगा रखा था। तो अचानक मेरी गाड़ी चल रही थी 50-55 की स्पीड पर और एक गाड़ी और आगे से निकली ऐसे करके, तो उसमें एक आदमी गाड़ी चला रहा था और उसका साथ एक शायद छोटू था या उसका लड़का था। उस बच्चे ने मुझे देखा, तो मैंने देखा मुझे देख रहा है और वो गाड़ी आगे चली गई। तो उसने अपने अंकल को बताया जो भी था कि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें एक अंकल जी ने तिलक लगाया हुआ है। तो उस व्यक्ति ने अपनी मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी कर ली और अपने शीशे से मेरे से पूछ रहा है ऐसे करके, सर ये क्या है। मैं उसके शीशे में देखकर बता रहा हूं कि ऐसे नहीं बता पाऊंगा, कॉल करो कॉल करो। कहते नंबर बताओ, ये दोनों गाड़ी चल रही है ऐसे आगे धौलाकुआं के रोड पर। मैंने कहा ओके नोट करो, 9 स्टेयरिंग छोड़ छोड़ के मैंने बोला 9 3 2 ऐसे कर करके उसने मोबाइल से नंबर मिलाना शुरू किया और उसने कॉल कर दी। मैंने देखा फोन आ गया, मैंने कहा सही है। फिर मैंने बोला हरे जी हरे कृष्णा। कहते हैं जी हरे कृष्णा। कहते प्रभु जी ये पूछना चाहता था, ये तिलक जो आपने लगाया इतना बड़ा, ये इसका क्या मतलब है, कहाँ से जुड़े हो, कौन हो आप? तो फिर हमने उसको प्रचार करना, दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं और धौलाकुआं तक पहुँचते पहुँचते प्रचार कर दिया, क्लास बता दी कहाँ होता है, मंदिर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, वो रानीबाग रहता था। और इस प्रकार के मैंने कहा शाम को क्लास में आना, सारे प्रोग्राम बताए। तो ये एक माध्यम बनता है, मंदिर के अंदर हम तिलक लगा के बैठे ठीक है, लेकिन आप लोग अगर तिलक लगाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो ये एक प्रचार का माध्यम बनता है। जब माला घुमाएंगे है ना, जैसे बाहर के लोग कुत्ते घुमाते हैं ना, कौन सी नस्ल का कुत्ता है, जो जितना मुश्किल से मिलता है कुत्ता, जितना छोटा अजीबो गरीब होगा वो उतना महंगा होगा, है ना। जिस कुत्ते को देखकर आप समझ नहीं पाओगे ये बड़ा चूहा है या कुत्ता है, वो और महंगा होगा। देखिए आपने, जिस कुत्ते को देखकर आप समझ नहीं पाओगे ये गाय लेके जा रहा है या कुत्ता लेके जा रहा है, भालू है या क्या है इसके पास, तो वो बड़ा महंगा होता है। जिस कुत्ते की शक्ल बड़ी गंदी सी है और जो टीवी में ऐड करता है, ऐसे कुत्तों की मतलब जो ऐसे कुत्ते बड़े महंगे हैं, है ना। तो लोग उसको घुमाते हुए फक्र महसूस करते हैं, उनसे नाम पूछो क्या नाम है, तो कहता है टोमी। कहते मैं कुत्ते का नहीं पूछ रहा आपका पूछ रहा हूं। कहते मेरे ही नाम टोमी है। कहते हैं तो कहते है इसका, कहते इसका मनोहर है। तो कहने का मतलब क्या है कि समाज जो है भगवान की सेवा धर्म को छोड़कर अधर्म का पालन कर रहा है, और अधर्म क्या है कि भगवान की सेवा ना करना, भक्तों की सेवा ना करना, अपने शरीर की सेवा करना, इस संसार की सेवा करना, या दरिद्र नारायण करके एक सोसाइटी खोल लेना कि इनकी सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा इनको गालियां देते थे ऐसे लोगों को कि आप दरिद्र नारायण मत बोलिए, आप या तो रियलाइज्ड बनिए, भक्त बनिए, ताकि आप हरेक के हृदय में परमात्मा का दर्शन कर सको, लेकिन आप ये मत बोलिए कि ये जो गरीब है ये नारायण है, क्योंकि आपका स्तर वो नहीं है कि आप हरेक के अंदर परमात्मा देखते हो। आप हो सकता है उसकी सेवा करने का भाव है आपके हृदय में, आप उस तरह सेवा कीजिए, शास्त्रों में लिखा है करनी चाहिए सबकी मदद, लेकिन आप उसको नारायण मत बोलिए। आप ये बोलिए वो भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूं, उसके हृदय में भी परमात्मा है, मेरे हृदय में भी परमात्मा है, और मैं उसको कृष्ण प्रसाद खिलाऊंगा, करिए ना सेवा, क्या दिक्कत। लेकिन आप उसको दरिद्र नारायण नारायण से उसकी तुलना ना कीजिए। तो अधर्मी क्या है, कौन है, जो भगवान के मार्ग से भटके हुए हैं। तो इस तरह 5 प्रकार की जो है चीजें बताई गई हैं, जिसको हम लोग अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कल जो लेक्चर देंगे या परसों जो देंगे उसके बारे में सब में बताएंगे, मैं थोड़ा सा और बताने का प्रयास करता हूं। अन्य द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं।
पर धर्म कहलाते हैं, अन्य द्वारा चालू किए गए धार्मिक, मतलब जो धर्म शास्त्रों के हिसाब से नहीं है लेकिन समाज के द्वारा शुरू किया गया है। कई बार समाज के द्वारा भी धर्म चालू कर दिए जाते हैं, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्म क्या है, कई तरह के हैं, कोई बताएगा एग्जाम्पल देगा, जो समाज में चलते हैं, चलन हो चुका है जिनका, जिनके धर्म से लेना कोई नहीं, नहीं कहने के हो सकता है इस तरह का। जैसे मैं बताता हूं, धार्मिक सोशल धर्म है जो कुछ समय के बाद बन जाते हैं, जैसे समाज में कुछ समय के बाद, जैसे पहले था कि कभी कोई विवाह करने के बाद हमारे धर्म में विच्छेद नहीं होता था, तलाक नहीं होता था, लेकिन अब एक धर्म बन गया है, क्या कि विवाह करो और छोड़ भी दो नो प्रॉब्लम है, कि नहीं, सामाजिक धर्म है। पहले लोगों को लगता था बड़ी शेम होती थी, नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है हर तीसरे चौथे घर में ऐसा है, तो ये स्वीकार कर लिया समाज ने कि कोई दिक्कत नहीं है। या फिर समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा लिव इन सिस्टम, लिव इन पार्टनरशिप, अर्थात विवाह बिना किए आप लड़की और लड़का इकट्ठा एक कमरे में रह सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, इकट्ठा रह सकते हैं, तो ये क्या है, सामाजिक धर्म बन गया। समझ पा रहे हैं, पहले माताएं घूंघट में रहती थी और समाज में पुरुषों के साथ उचित दूरी बनाए रखी जाती थी, तो ये रिचुअल थे। अभी क्या है, ऐसा नहीं है, अभी स्वीकार कर लिया गया है जन समुदाय के द्वारा कि नहीं नहीं सर ढकना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम लोग और भी आगे बढ़ गए, और इस प्रकार के जो नियम और धार्मिक जो सबके समाज में आ गया, जैसे भी हमने सुना कि कोई वेबसाइट, गंदी वेबसाइट सरकार ने बंद करी, धर्म का पालन करने का प्रयास किया, अधर्म को हटाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ 0.1% लोग ऐसे भी हैं समाज में जो एडिक्टेड हो चुके हैं उन चीजों के, गंदी चीजों के, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो सरकार 0.1% लोगों के शोर से डर गई और उन्होंने फिर से शुरू कर दिया उन गंदी वेबसाइट को, जबकि 99.9% लोग या कम से कम 90% लोगों को मालूम है इसका क्या नुकसान है, लेकिन जो इस तरह के लोग थे उन्होंने उसका विरोध नहीं किया या अप्रिशिएट नहीं किया, इसकी वजह से क्या हुआ कि उसको फिर से शुरू करना पड़ा। तो समाज किसी चीज को कुछ समय के बाद एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सामाजिक धर्म बन जाता है। तो यहां बता रहे इस प्रकार के धर्म को ना माने, जो मिथ्या गर्व करता है और वेदों के नियमों का विरोध करता है, नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो वेदों को नहीं मानता और गर्व करता कि मेरा जो ज्ञान है वो टॉप मोस्ट है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, तो ये भी अधर्म है। इस प्रकार के अधर्म और भी चीजें बताई गई हैं, तो ये हमें वो चीज ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है कि अधर्म क्या है, वैसे तो हम लोग कहीं ना कहीं अधर्म का पालन हमसे हो ही रहा होता है, लेकिन हमें यह सीखना है कि धर्म क्या है। धर्म है भगवत प्रणीतम, अर्थात जो भगवान ने अपने मुख से बोल दिया, अगर हम उसका पालन करने लग जाएंगे तो धर्म का पालन होना शुरू हो जाएगा। यही एक ऐसा गुण है जो हम लोगों को मनुष्य या भक्त बनाता है, नहीं तो द्वि पाद पशु, दो पैर वाला जानवर कहलाता है मनुष्य। क्यों कहा गया है, धर्मो ही तेषो अधिको विशेषाम धर्मे न ही न पशु भी समान। अगर कोई व्यक्ति देह प्राप्त करने के बाद धर्म के नियमों का पालन नहीं करता है तो वो पशु के समान है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। और धर्म क्या है, भक्ति क्या है, या जो वो समझने के लिए, वो सीखने के लिए हमें श्रवण करना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा। और कम शब्दों में अगर उसकी बात करें, उस धर्म को समझने की बात करें, तो भगवान के विषय में उनके गुणों का सुनना, भक्ति के नियमों का पालन करना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कलयुग का टॉप मोस्ट धर्म है, कलयुग का युग धर्म है, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों को जप शुरू कर देता है तो धार्मिक बहुत सारी विधियों में ये टॉप मोस्ट है, भजनेर मध्य श्रेष्ठा नवविदा भक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठा नाम संकीर्तन, ये कीर्तन करना, भगवान की कीर्ति का गान करना, ये सारी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो जब हम इसका पालन करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, धर्म का पालन होना शुरू हो जाएगा। और जब धर्म के नियमों का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अधर्म से हमारी विरक्ति होना शुरू हो जाएगी, अधर्म के प्रति हमारी रुचि खत्म हो जाएगी और हम धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ धार्मिक गुण भी हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि जब प्रभुपाद जी ने उन लोगों को प्रचार किया धर्म के नियमों में, सबसे पहला ये धर्म इंट्रोड्यूस किया कि हरिनाम लेना शुरू करो, तो उसके बाद सारी विधि उन्होंने पालन शुरू कर दी, डूज और डोंट्स भी अपने फॉलो होना शुरू हो गए। तो इसी तरह किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बार बार मंदिर नहीं आ सकता, मैं इतनी खतरनाक तपस्या नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो अभी क्रोध भी है, मेरे अंदर तो अभी ये सब उल्टी सीधी चीजें भी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में अधर्म के प्रति लोगों की स्वाभाविक रुचि होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का जप करना शुरू कर दे, भगवद गीता या भागवतम पढ़ना नियमित रूप से शुरू कर दे, तो जो अधर्म है उसके पास वो धीरे धीरे अपने आप कमजोर होना शुरू हो जाएगा, धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़नी शुरू हो जाएगी, भगवान के गुण नाम रूप लीलाओं के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाएगा। अभी हम लोग नाम लेते हैं तो इस संसार के लोगों के नाम लेते हैं या अपने नाम का गुणगान चाहते हैं, गुणों को सुनते हैं तो फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार के गुणों को सुनना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, लीलाएं सुनते हैं तो अपनी या फिर उन लोगों की जो खतरनाक लीला है। तो इस प्रकार जब जो रुचि इधर बनी हुई है, जिस दिन वो इधर बन गई, तो ये बनेगी कब, जब धर्म के नियमों का पालन शुरू कर देंगे। और धर्म क्या हमने बताया, शुरुआत कहां से होगी, जिह्वा से धर्म शुरू होगा, सेवोन मुखे ही जिह्वा दो। जिह्वा से दो काम होते हैं, एक बोलना, तो अधिक से अधिक भगवान के नामों को बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। दूसरा टेस्ट, भोजन करना है ना, तो कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जो भी घर में बनाए बिना प्याज लहसुन के उसमें तुलसी रखकर भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और उसके बाद उसका सेवन करें। तो ये दो चीजें करने से हमारी बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पूरा धर्म पालन हो जाएगा धीरे धीरे, हमें ये प्रेरित करेगा और नियमों का पालन करने में। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो आकर्षित होते हैं भक्ति से और कुछ समय के बाद वो भगवान के धाम आसानी से एंटर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा है?
एक तो जो सतोगुण में है और दूसरे जो तमोगुण में, मुझे मैं कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपको इस बात के लिए ना।
तामसिक वृत्ति में जो लोग नशे में पड़े हैं, लेजी हैं, तो उनको देहिक सुख मिल रहा है, शारीरिक ठीक है, हम कंफर्टेबल, और जो सतोगुण में है उन्हें आत्मिक सुख मिल रहा है। तो वहां पर आत्मिक सुख की बात हो रही है, आत्मिक सुख और मानसिक सुख उनको प्राप्त है, सेटिस्फाइड है सतोगुण में लोग। और जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं, जो देहिक सुख से खुश हैं, तो वो उस प्रकार से सुखी है। लेकिन इनको कंपेयर नहीं कर सकते कि तामसिक वृत्ति का सुख और सात्विक वृत्ति का सुख बराबर है, नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। तो यहां पर बताया जा रहा है वो दैहिक सुख है, क्षणिक सुख है, लेकिन वो जो है सुख, वो आत्मिक सुख, वो परमानेंट सुख है, काफी अच्छा है। और जो राजसिक हैं, मतलब जो बीच के लोग हैं, जो हमेशा उद्वेगित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुख और गर्मी सर्दी से परेशान रहते हैं, ये सब परेशान रहते हैं, और मेहनत करनी है, और प्लान करना है, और प्रॉफिट चाहिए, और ये करना है, और मकान चाहिए, ये खाना है, ये भोग, इस तरह कर, तो वो डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा, उपाद्रता हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे कलयुग के लोग। लेकिन एक शराबी है सड़क के कोने में लेटा हुआ, आप देखो कार के अंदर बैठा व्यक्ति जल्दी पहुंचना, टाइम नहीं है, रेड लाइट हो गई, लेकिन सड़क पर लेटा हुआ व्यक्ति तामसिक, उसको कुछ चिंता ही नहीं, लेटा हुआ, समझ रहे हैं? तो वो शरीर के सुख से खुश है कि रात को बोतल चढ़ाई थी, अभी सो रहा हूं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो रजोगुण में है, जिसे भागना है, दुखी है, वो उद्वेगित है, मुझे ये काम करना है, फिर वो करना है, उसकी पेमेंट देनी है, उसे पेमेंट लेनी है, वो इस प्रकार से दुखी विचलित है।
वो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं समझ सकते ना उनको वो सुखी है।
हम जो
जैसे वो शराब पी करके या कोई बड़ी फैक्ट्री बना करके अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है वो, लेकिन जो
हमें मालूम है, हमें मालूम है कि वो लोग शराब के नशे में या अधिक लेजीनेस की वजह से अपने को सुखी मान रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो वास्तव में सुख नहीं है। सात्विक सात्विक वृत्ति समझ पाते हैं इस बात, राजसिक भी समझ पाते कि ये सुख सुख नहीं है। तो ये देह सुख की बात कर रहे हैं। जैसे हमें मालूम है कि हलवा खाना अच्छा है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है, लेकिन हमें मालूम है गंदगी खाना, मल खाना ठीक नहीं है, लेकिन सुअर को लग रहा है कि ये मेरे लिए हलवा है ना, तो हमारे लिए हलवा नहीं है। और कोई प्रश्न? ठीक है। ग्रंथ साहिब श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी।